विद मुख पुनंग अमृत नाय चरणासमान।
जहर सर्प के जहर होता है,
तो वो सर्प के जो जहर होता है तो जहर के कारण से जिसको वो डसता है वो मर जाता है, परंतु शंकर भगवान के हृदय में गले में जो जहर उन्होंने धारण कर रखा है तो अंदर भी उन्होंने जहर गले को गले में धारण कर रखा है, तो बाहर से आने वाला जो सांप का जहर है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पर उस जहर को भी इस प्रकार शक्ति देने के लिए उन्होंने राम नाम को हृदय में कंठ में धारण किया है, और राम नाम को शंकर भगवान ने जिस समय जहर पैदा हुआ समुद्र से, असुर लोग विनती करने के लिए देवता से मिलकर के प्रार्थना करने के लिए कि महाराज ये जहर निकल गया, आपके सिवाय कोई उसको हजम करने वाला नहीं, समर्थ नहीं, शंकर भगवान ने जहर लिया, लेकिन अब मैं पीऊंगा तो हृदय में जो विराजमान राम जी उनको कोई तकलीफ हो जाएगी, अंदर जाना नहीं चाहिए बाहर भी रहना नहीं, इसलिए उन्होंने उस जहर को गले में डाल लिया, रा बोल करके गले में डाल लिया, रा से तो गले को नीचे से बंद कर लिया और मैं बोल करके ऊपर से बंद कर लिया उस गले को, तो गले के बीच में नीलकंठ बन गए। वो महादेव जी नीलकंठ वो नाम के प्रताप से बने हुए हैं, अब दूसरा जहर उनका क्या बिगाड़े, जिसने जहर को भी हजम कर लिया नाम के प्रभाव से, नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमीको, हजार जहर जो अमृत के समान बन गया वो भी जहर जिस नाम के प्रभाव से, तो वही नाम संत महात्मा हृदय में धारण कर लेते हैं तो उसके बाद में ये कोई भी विषय बाहर का विष संसार का विष हमें संताप नहीं दे सकता। गुरु महाराज की चरणारविंद वो सच्चा अमृत प्रदान करने वाले हैं। आप देखो ना, एक तो मुंडा में पानी लेन कोई कुल्ल थूके और एक चरण धोकर के जल बनावे अमृत बनावे, कौन सा अमृत कहलाएगा बताओ? मुंडे वाले पढ़ ने अमृत कह हो कि अंगूठा धोड़ा ने जल ने अमृत कह हो, मुखामृत कह हो कि चरणामृत कह हो बताओ? मुंडो गुण ही पवित्र है, हमारे शरीर में पुष्टि देने वाला है, परंतु वो उच्छिष्ट है, कोई चीज जगते ही वो दूसरे को उच्छिष्ट कर देता है, और चरण है उनको चरण जिनको पैरों नीचे रहने वाले हैं, परंतु वे उनका चरण जल स्पर्श होते ही वो अमृत कहलाएगा। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के अंगूठे से हुआ है, इसलिए वो गंगा जी है चरणामृत से प्रकट बनी प्रभु के चरणामृत के रूप में, इसलिए परम पावन है। मुखारविंद की कोई नदी प्रकट हुई नहीं है ना, बताइए मुख से प्रकट होने वाली कौन सी? चरणों की तो सदा पूजा होती है, और मुंडे ने तो कदे दूजी तरह पूजा हो जाओ, भाई थपड़ों पूजा भी हो जाए हो याद रख दो, पगारी पूजा थपड़ों को नहीं वे कर थप्पड़ जूत इन पग के मारे, कोई थप्पड़ मारे तो मुंडा ने मारी मत हम मारे पगारे कोई को नहीं मारे, अब तो कोई माटे दब जाए आटूटी में चिक दी जाए बात हो जाए तो अलग है, लेकिन मार पड़ेगी तो मुंह को पड़ेगी पैरों को नहीं, क्योंकि वो अमृत देने वाला है, ये अमृत देने वाला नहीं है, केवल अहंकारी बनावा ऊपर बनावा सब खा पी करके खत्म करता है, लेकिन वो इस प्रकार अमृत रूप में नहीं है। तो इस प्रकार अमृत नाए चरणा समान, शिष्य का हृदय रूप ऐसे अमृत की प्राप्ति के लिए पद सेवन पाद सेवन करो, उन चरणों का आश्रय रखो। अरे इन्हीं चरणों के प्रताप से अहल्या का उद्धार हुआ, नौका में बैठा करके नाविक ने कितने जीवों का उद्धार कर लिया, पूर्वजों का वंश कई वंश का उद्धार कर लिया, पितर पार कर प्रभु ही पुनी बुदित गये ले पार, बताइए इन चरणों के प्रताप से। गुरु महाराज के चरणों के बल से हम बलवान बन सकते हैं, आद अंत में कोई भी प्राणी है इन्हीं चरणों का सहारा पा करके मोक्ष पद पा सकता है। चरणों के प्रताप से देखिए गंगा जी पवित्र बनी, चरणों के प्रताप से सबरी ऋषियों में श्रेष्ठ मानी गई बनी, और जहां कहीं संत महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वो जमीन पूजनीय बन जाती है, क्योंकि इन महापुरुषों के चरण पड़े हैं। और तीर्थ जितने भी बने हैं वो संतों के चरण पड़ने से ही तीर्थ कहलाए, नहीं तो तीर्थ नहीं है कोई। जहां तीर्थ होते हैं वहां पर संत महापुरुषों के तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को जो पवित्र बनाने वाले सत्पुरुष हुआ करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड इंड जनपद धरत रमण भवन वैकुंठ छपी, वैकुंठ में भी संत महापुरुषों का जो निवास स्थान होता है इसलिए वैकुंठ की शोभा है, पूजनीय आदरणीय वैकुंठ नहीं कोई को नहीं पूछे। दयाल बाल ताचरण की कहा पूज्य महिमा कर, दयाल जी महाराज कहते ऐसे जो पूजनीय महापुरुषों के चरणारविंद है उनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। पद सेवन चरण सेवा के विषय में ये गुरु चरणों की सेवा का प्रताप बताए। पांचवी अर्चना भक्ति है, पूजा भक्ति, अर्चन ये विद सतगुरु प्रेम भक्ति अपार, रामायण श्रीमंत में जो सेवन अवतार, श्रवण कीर्तन नाम जप पद अर्चन पुनिबंध, दास सखाकृत समर्पण श्री गुरुदेव संबंध। अब अरे पूजन की विधि जैसी रामायण में और श्रीमद भागवत में जिस प्रकार की सेवा की विधि बात बताई है, भगवान की जैसे सेवा की जाती है उसी भाव से आप गुरु महाराज की सेवा करो। नवदा भक्ति का संबंध गुरु महाराज के साथ में जोड़ दो, संतों के द्वार पर जाकर के या उनको अपने यहां बुला करके आप उनको साक्षात परमात्मा रूप मान करके उनकी सेवा करो, अपना स्वरूप भूल करके अपनी योग्यता जितनी भी है उन संपूर्ण योग्यता को उनके सामने रखते हुए अपनी तरफ से पूर्ण रूप से निरहंकार होकर के सेवा करो। अब सेवा करने के लिए अब कैसे सेवा करनी चाहिए, वहां सगुण सेवा यहां निर्गुण सेवा के लिए वर्णन लिखा है भाइयों। स्पटक मणि अखंड अमूर्त देव अनाद धरे उर्माय धिया ने साध, स्पटक मणि जरों गुरु माग पधारे ताय सदाय सभाग, नमो अनकेत वैकुंठ प्रकार परसन भोजन भाव विचार, कहूं सथूल काम चरित रचना आन विराट धरत। अखंड और अमूर्त रूप जो परमात्मा है वे हृदय में विराजमान है, मैं हृदय में स्फटक मणि का सिंहासन लेकर के उन पर गुरु महाराज को विरज विराजमान कर रहा हूं। वैकुंठ से चल करके साक्षात गुरु महाराज यहां पर पधारे हैं, ब्रह्मांड का जो उत्तम नीर है वो पानी लेकर के मैं उनके चरण धो रहा हूं। जो जिस स्थान पर विराजमान है वहां पर चारों तरफ मलयागिरी चंदन मैं लगा रहा हूं और चंदन का तिलक लगा रहा हूं और सुगंधित पदार्थ उनको अर्पण कर रहा हूं। सम नम जम ये जो चीजें हैं इनकी फूलमाला बना करके गुरु महाराज के गले में धारण करा रहा हूं। 56 प्रकार का जो भोजन है और नाना प्रकार से जो तैयार किया गया है वो मैं प्रेम से गुरु महाराज के भोग लगा रहा हूं। सब कुछ चीजें केवल भाव में आती है, इस भाव की कीमत बड़ी अमूल्य है, जहां भाव है वहां पर गुरु महाराज उसे अवश्य स्वीकार किया करते हैं। देखो विदुर जी के यहां पर उनकी भावना को स्वीकार करने के लिए पधार गए, अब विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए तो आपने प्रेम से वो खा लिए, और केले खिलाए विदुर जी ने कि इसमें वो स्वाद नहीं है, खत्म हो गया स्वाद, बताए तो भाव था, उस भाव के कारण से सभी सिर्फ भोग लयो करता रह। सभी प्रकार के दोष भगवान ने कृपा करके दूर दिए, एक दूर कर दिए भाव के कारण से, तो भाव के लिए भगवान समय समय पर आकर के विराजमान हुआ करते हैं, अवतार धारण करते हैं। रच मंदिर उर्विच जो भाव भाव कर अपने हृदय में सुंदर मंदिर बना लो, उस पर भाव करके गुरु महाराज को आसीन कर लो। पुनि भाव थानक ब्राज सतगुरु भाव कर सिंहासनम, कर भाव पूजन सेव सतगुरु सूंज सब प्रकाशनम, बर भाव कल सम नीर उज्जवल भाव कर झूला वही, ता भाव अम्बर सदा नूतन प्रेम कर पहराई। पुनः सुगंध लेपन भाव विद विद भाव पुष्प माल है, नित भाव भोजन भोग लागे भाव परम रसाल है, कर भाव दीपक भाव धूप भाव थाली हिमाय है, पुनः भाव आर्त घंटा अनद भाव कर धुन लाय है। दर भाव मर्दंग कोट झालर ताल ख्याल अनूप ही तद बजे जी जुम श्री मंडल अगम अदरास रूप ही जहाँ श्रुत सर्वन श्रुत नेत्र भाव प्रेरक भाव है वहाँ गिगन मगना अगम रचना सतगुरु लिवलाय है। क्या बताए, भाव को भाव के रूप तो स्थान है, एक भाव में सारी चीज बदल, इसके द्वारा सब बना दो आप। भाव का तो स्थान है और जहाँ पर गुरु विराज विराजमान होते हैं, भाव का आप सिंहासन बना लो, भाव की पूजन सामग्री बना लो, भाव करके गुरु महाराज की सेवा करने चालू कर दो, भाव के लिए आप भाव से अनेक प्रकार की सामग्री बना के लेकर आओ, प्रकट कर दो, भाव रूपी कलश ले लिया हाथ में और निर्मल जल भर लिया, भाव रूपी जल भर करके उससे भाव रूपी हाथों से गुरु महाराज को स्नान करायो। अपने मंदिर में ठाकुर जी को जैसे स्नान करता है शालग्राम जी को, ऐसे वो स्नान कराओ, ऐसे भाव के द्वारा गुरु महाराज को स्नान कराओ हृदय में, तो भाव अंबर। अब भाव रूपी नया नए कपड़े पहनाओ उनको और अपने हाथों से पहनाओ, मैं पहनूंगा नहीं, हम पहनाएंगे, बाद में सुगंधित दिव्य पदार्थ भाव रूपी लेकर के आओ और भगवान के लेपन करो, भांति भांति के भाव रूपी फूलों की माला लेकर के उन्हें धारण कराओ, नित्य प्रति भाव रूपी दिव्य भोजनों को भोग लगाओ, भाव रूपी उसमें रस भराओ, भाव रूपी दीपक हो और भाव रूपी दीपक में भरा हुआ घी हो जिससे आरती करो, भाव रूपी थाली में रख दो, भाव रूपी आरती करो और अनंत घंटा बजाओ उस भाव के द्वारा और भाव की ताली बजाओ आप, दाव भाव रूपी आप शंख बजाइए, एक नहीं अनेक झालर मृदंग ये सब आप भाव के द्वारा नित्य निरंतर बजाते गाते रहिएगा। आपकी मंजीरा बज रहा है, श्री मंडल की ध्वनि आ रही है, अगम दिव्य अनोखे वाद्य प्रकट हो रहे हैं, जहां आपकी श्रुति लगी हुई है, आपके नेत्र वहीं पर हैं, आप स्वयं वहीं पर मौजूद हैं, भावी प्रेरणा देने वाला है और वहां उस आकाश में जैसे अपार स्थिति आकाश की, इसी प्रकार गुरु महाराज के अपार तेज में आप जुड़े रहो, उनकी भावना के द्वारा स्तुति करो, नमस्ते नमस्ते सदा सुख स्वामी, नमस्ते नमस्ते हो अंतर्जामी, नमस्ते दयालम कृपालम च देवा, नमस्ते भक्ति समुक्ति सभेवा। हे गुरु महाराज सुख के स्वामी, आपको नमस्कार है, अंतर्यामी को नमस्कार है, दयालु को नमस्कार है, कृपालु को नमस्कार है, भक्ति और मुक्ति का रहस्य बताने वाले महाराज को नमस्कार है, परम धर्म रूप को शब्द वाणी से अतीत रहने वाले, तीन गुणों से अतीत रहने वाले, पांचों तत्वों से आप परे रहने वाले, माया मोह को जीतने वाले हो, सदैव उदार मना, ऐसे रामदास जी महाराज को मैं बार बार वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे इन्होंने गुरु महाराज की बड़े भावपूर्ण शब्दों के द्वारा अष्टक के द्वारा स्तुति की, इस प्रकार के आठ जन प्रणमंच देवाद देवादेव अष्टंग दंडोत उद्धोत से हो, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार आपको साष्टांग दंडत प्रणाम करता हूँ महाराज, साष्टांग आप ही हमारे हो, हमारे विकार मिटाइए, आप आनंद स्वरूप अन्न प्रदान कीजिए, आप एक छोटा बालक माता पिता की क्या के अपने मुख से स्तुति कर सकता है, आद अंत में आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो, ये विधि अष्ट छंद आनंद पर दूर हो ये त्रेताप, ये विधि गावत ग्रंथ सब सदगुरु समृत आप, जो ये आठों छंद है प्रेम पूर्वक पढ़ता है उसकी हृदय के तीनों ताप दूर हो जाया करते हैं, ऐसी बात संत और ग्रंथ बताते हैं, और ये केवल बताने की बात नहीं, वास्तव में ऐसा प्रभाव है गुरु महाराज में, और उनके साथ में जुड़ करके उनके प्रभाव को जानने के जिज्ञासु बने तो सही, केवल जिज्ञासु बनने की आवश्यकता है, अपने आप को उनके साथ में जोड़ने की बात है। इस प्रकार अब वंदन भक्ति बताते हैं, वंदन वंदन वंदना आनंद कंद दयाल शिशु पूजक मन तन सिमर ये विधि हो तो निहाल। वंदन गुरुदेव जी महाराज को वंदन कीजिए, आपका फंद मिटाना चाहते हो तो, दुख द्वंद दूर करना चाहे हो तो ऐसा कीजिए, वे आनंद के कंद है, आनंद के ही पुतले हैं, वे चंद्रमा जैसे सबको शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार उनके आश्रय में जाने पर सहज में आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी, जीव निर्भय हो जाएगा, मन में जो प्रेम की लहर जागृत हो जाएगी, जो उनके हृदय में नाम का अमृत प्रकट हो रहा है वही अमृत उनके शरण में जाने पर, उनको वंदन करने पर हमारे को अपना आप मिल जाएगा। देखो ना, वक्ता को प्राय करके ऊपर बैठा करके श्रोता सत्संग सुनते हैं, ये नियम बना हुआ है। कारण ये है कि नदी का प्रवाह जैसे ऊपर से बढ़ करके नीचे की तरफ सदा जाएगा, यदि श्रोता ऊपर बैठ करके सुनना चाहेगा वो लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि पानी कभी ऊपर चलेगा क्या, वो तो सदा नीचे के प्रवाह में जाएगा। तो इसलिए क्रम बनाया है कि श्रोता को, वैसे कोई श्रोता बड़ा है इसलिए ऊपर बैठा है जाए, वक्ता वो बड़ा है ऐसा नहीं माना गया है, बड़ा नहीं है, लेकिन जो आने वाला प्रवाह है, सत्संग का प्रवाह है, ज्ञान का प्रवाह है, वो नीचे बैठने पर, नीचे सुन बैठ करके सुनने पर आसानी से मिल जाएगा, सुगमता से मिल जाएगा। इसलिए उनके सामने वंदन करने के रूप में नीचे बैठ करके ही ये प्राप्त करने की परिपाटी चलाई गई है। जहां कहीं भी सत्संग का प्रवाह होता है तो वैसे ही चलता है, और आजकल जमाने में तो बैठक उल्टी चलती है, सुनाने वाले नीचे और लेने वाले ऊपर होते हैं। स्कूल में देख लीजिए ना, विद्यार्थी पढ़ने वाले तो बैठे रहते हैं सूटेड बूटेड होकर के टेबल कुर्सी पर, और मास्टर बेचारा खड़ा रहता है जैसे कोई दंड दिया गया है, पौन घंटे तक इधर से इधर उधर ब्लैक बोर्ड के पास में भटकना पड़ेगा, वो बैठ नहीं सकता। अब सजा भोगने वाले विद्यार्थी है, सजा भोगने वाला मास्टर है, बताइए। उल्टा ज्ञान, अब उनसे मिलने वाला ज्ञान को सीधा मिलेगा विद्यार्थियों को, क्या संस्कार अच्छे मिलेंगे, तुम संस्कारवान बनो। इसीलिए तो पहले तो किसी को दंड देना होता तो स्टैंड अप, लड़के को खड़ा कर दिया, वो बेचारा घबराता कि मुझे खड़ा कर दिया, इतने को बीच में सजा भोग रहा हूं, बात ये थी। लेकिन अब वो तो बैठे रहेंगे लाट साहब बने हुए विद्यार्थी, तो और टाइम पूरा होगा तो मास्टर दूजे ही आएगा, लेकिन वो खड़े नहीं होंगे, छोकरे तो वहीं के वहीं अपने बैठे रहेंगे कुर्सी टेबल पर ही, वैसे ज्ञान फिर होगा नहीं, तो क्योंकि विनम्रता है कहां। तो सत्संग का जब आते हैं कि ऊपर से नीचे प्रवाहित होने वाला ज्ञान, उसको इसी रूप में सुगमता से प्राप्त किया जाता है वंदन के माध्यम से। तो हम गुरु महाराज के चरणों में वंदन करके, नमस्कार करके उनका ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मीन नीर प्रतिमान करें अष्टंग सदाई, अष्टंग के विषय में इस प्रकार का दंडोत का विधान बताया कि पानी जैसे पानी में मछली चलती है, वो पानी चारों तरफ उसके पानी शरीर के स्पर्श होता है, उसी प्रकार जमीन का शरीर का स्पर्श होना चाहिए। करडे रह करके ऊंचे रह करके कोई दंडोत करे, कपड़ा मेला हो जाए लगा नीचे दंडोत कर ली तो वो दंडवत नहीं कहलाती। मीन नीर वर्तमान करे सष्टंग सदाई, आर्द दंडाधीन रखे तन शुद्धि नकाई। आप ऐसा शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है जिससे दंड वध का लकड़ी खड़ी है, वो जैसे ही नीचे गिरेगी वो नीचे नहीं देखेगी, नीचे पत्थर है या कांटा है या कंकर है कि मिट्टी है कि पानी है, वो दंडवत कहलाता है। लेकिन ये भी नहीं, सावधान रख करके भी करने की बात होती तो नहीं की जाती भैया, वार वार जीवन सफल आद अंत सुख धाम है, रामदास महाराज को शिष्ट प्रभाव प्रणाम है। ऐसे उन गुरु महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मैं सदैव उनके चरणों के अधीन रहूं, ऐसी मेरी उनसे बार बार प्रथा। अब रही सातवीं भक्ति, दास्य भक्ति। हनुमान जी जैसे दास भक्त बनकर के सेवा करने लगे, उर ध्यान निश्चय एक धारा प्राण मारा तार, तुम प्रसाद दास लक्षण गुरु आत्मयार। दास का उल्टा शब्द होता है सदा, अक्षर उल्टे करोगे तो क्या बनेगा, सदा बनेगा, और सदा और दास ये दोनों एक है, तो दास को सदैव एक जैसे बना रहना चाहिए। दुनिया में आजकल दास मतलब सेवक बनना किसी को पसंद नहीं है, स्वामी होनो सोरो दोरो होनो दास, गढ़ रानी उनने बाधी चले कपास। बड़ा बनने की सबकी मन में लालसा होती है, लेकिन छोटा बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन नानक नन्ना हुई रहो जैसे नन्नी दूब, और घास सब सूख है पर दूब खोब की खूब। छोटा बनने में सदा लाभ है, बड़े बनने में हानि है। भाई घर में कभी थोड़ी मिठाई आई तो बच्चों को पहले मिलेगी, मोटा लोग देखता रहो भले मुंडा बुलाड़ा हो तो भले ही आओ, बच्चों को पहले मिलेगी कि छोटेपन का फायदा उनको। छोटे को सदा लाभ है ही, विनम्रता है वहां सहज में, सरलता है सरसता है। जमीन पर पानी कहीं भी गिरेगा तो जहां पर खड्डा होगा नहीं, झुका होगा जमीन का हिस्सा, वहां पर पानी जाएगा, पहाड़ के ऊपर पानी नहीं जाएगा। जो होगा वो सब बह करके चला जाएगा, और छोटा तालाब हो चाहे जमीन में भी खड्डा क्यों नहीं हो, पानी वहां उसको भर देगा। तो इस प्रकार ये जो दास भक्ति है, दास के द्वारा सदैव आप उनके शरण में जुड़े रहो। कभी भी लिव लागी पर ब्रह्मसो रतीन खंडे था, कभी भी उनसे अलग मत हो। हाथ जोड़ करके रात दिन उनकी आज्ञा के तरफ ख्याल करो। क्या कहते हैं सदगुरु को मुख देखता, ये मुख देखना है ना, और मुंडो देखना कोई नहीं हो, मुंडो देखना कोई देखे, मुंडो देख लियो साहब, फोटो में देख लियो, मुंडो देख लियो, उन्हें काम नहीं बनेला। मुख देखने का मतलब है मुख से क्या कहते हैं वो बात देखो आप, मुख से क्या कहते हैं उनके वचन क्या निकल रहे हैं। जो वचन हमारे हित के लिए बताते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए बात बताते हैं, उस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए। बात मुख से निकलेगी तो वो मुख का जो सवाल है, शब्द है, उसकी तरफ सदा ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में इनका कथन क्या है। समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए, जिज्ञासु बनकर के जानकारी लेनी चाहिए, बोध प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि नहीं समझ में आया, होता है कई बार ऐसा, तो जिज्ञासु बनकर पूछ लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन वो शब्द सुनेंगे तो पूछेंगे, सुना ही नहीं तो पूछेंगे क्या क्या कार क्या नहीं कहा, कौन जाने। गुरु वाच में गुरु, उठते बैठते सोते गुरु महाराज के वचन में लगन लगी रहे, बस इस प्रकार ये दास भक्ति बनी रहे आप उनके। कभी भी उनसे ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बन जाऊं और मैं बड़ा बन करके मेरी पूजा हो, मेरी जय जयकार हो, मेरे शिष्य बन जाए, मेरी परंपरा चले, मेरा ऐसा हो जाए वो हो जाए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। बस आत्मा के सच्चे यार केवल एक गुरु महाराज है, मैं इनसे जुड़ा रहूंगा तो हमारे आत्मबोध प्रकट होता रहेगा। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति, आठवीं भक्ति सख्य भक्ति, मित्रता। या को कारण मुक्त फल सारूपी कर दे, हम उनके साथ में जुड़े रहेंगे, दास बने रहेंगे और उनके साथ में रहेंगे तो जैसे कोई द्वारपाल होता है ना, द्वारपाल जिसको पैरे पर खड़ा कर दिया और कह दिया किसी को अंदर आने मत देना। आपकी यदि उससे दोस्ती है द्वारपाल से, तो द्वारपाल आपको कह देंगे हाँ भैया आजा आजा कोई बात नहीं, अंदर प्रवेश दे देगा, और दूर से तो बेचारे देखते रह जाएंगे, प्रवेश मिल नहीं पाएगा। तो सख्यता है, मित्रता है, आत्मीयपना है। तो यदि हम गुरु महाराज से उस आत्मभाव जुड़े रखेंगे तो भी हमें कौन सी जगह प्रवेश दिलाएंगे, सर्कस में नहीं, सिनेमा घर में नहीं, थिएटर में नहीं, वे प्रवेश दिलाएंगे परब्रह्म परमात्मा के दरबार में। सारूप्य सायुज सालोक मुक्ति है, चार प्रकार की मुक्ति कहलाती। पहले तो सामिप्य, दूसरे में सारूप्य और सायुज, और चौथी मुक्ति है शास्ति। तो एक सालोक की पहली मुक्ति में आप को वे आप पहुंचे भगवान के लोक में पहुंच गए। उदाहरण के रूप में इसको समझो तो देखिए, जोधपुर जिले में जैसे कोई जिलों में उतरे होते जोधपुर जिले में आ गए तो जोधपुर में पहुंच गए, ये तो सालोक की मुक्ति है, लोक में पहुंच गए आप। अब सालोक के बाद में सामिप्य में दूसरी मुक्ति में आप जोधपुर जिले में आने के बाद आगे बढ़े जोधपुर की तरफ, खुद जोधपुर नगर में पहुंच गए लेकिन दरवाजे के पास है, ये समीप में आ गए, उनके पास में आ गए। और तीसरी है सारूप्य, तो जैसा भगवान का रूप है वैसा का वैसा उस भक्त का रूप बन जाना, ये तीसरी मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सायुज्य। जैसे ये तो उनका गुण स्वरूप हुआ है, लेकिन चौथे में सायुज्य, जैसे भगवान है लून पानी में पानी मिल जाना, ये सायुज्य। और पांचवी भक्ति जिसको शास्त्री कहते हैं, सृष्टि बनाने का जैसे सामर्थ्य भगवान में है वैसे वैसे सामर्थ्य। लेकिन भगवान के ऐसे जो मुक्ति का क्षेत्र है, उस मुक्ति के क्षेत्र में हमारे को प्रवेश दिलाते हैं गुरु महाराज। उनसे यदि दास्य भाव रखोगे, साध राम का पौड़िया ऊंचीता के हाथ, रामदास संशय तजो करो संता को साथ। ऐसे उनके साथ में मित्रता का ये रूप है। अब नवमी भक्ति है आत्मनिवेदन। अब आत तन मन धन सदन सु हरि करे समर्पण सोय कमजा जन्मा जन्म की गुरुते कदे न दोष। हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारा धन है, हमारा घर बार है, ये सब जो कुछ भी हमारा पास में है, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके हम अपना मालिक बने हुए, वो सारी की सारी चीजें एक जन्मनी जन्म जन्म की जो कुछ भी कमाई की हुई हमारे पास में है, वे सब के सब गुरु महाराज को सौंपते हैं। गुरु ते करे न दो, इनको कभी भी गुरु महाराज से भिन्न मत रखो। गुरु महाराज की चीज बना करके उनको समर्पण करने के बाद में आप काम लेओगे तो कोई दोष नहीं होगा कि आप उनके बन गए। अरे बेटो बन करके मारा खोड़ा में बैठ, मारो दूध पिए नहीं मारो खून पिए हो। बेटो बन करके तो दूध पी सके, पर बिना बेटा बनिया कोई दूध पी सके है? बताओ आप। बेटा होगा तो पेट भी दूध पी सकेगा, दूसरा नजदीक नहीं आ सकता, देख ही नहीं सकता, पीने की बात हो गई। और तो इसी प्रकार भगवान गुरु महाराज के बन गए, बनने के बाद में आत्मसमर्पण कर दिया, तो समर्पण करने के बाद में हमने आपा उनको सौंप दिया, तो आपा सौंपने के बाद हमारी चीज उनकी, तो उनकी चीज सब अपनी है। स्वामी जी महाराज प्रसंग बताते थे ना, एक किसी सेठ जी ने बहुत बड़ी हवेली बनाई। कोई हवेली बनाई है भगवान की भक्ति करने वाले थे, उन्होंने घर में मंदिर भी बनाए एक ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए, और खुद प्रेम से सेवा पूजा किया करते थे मंदिर की। एक दिन कोई महात्मा जी वहां पर आए, कोई भक्त आए, तो महात्मा जी इनको घर हवेली दिखाने के लिए लेके गए। ये बैठक मकानों के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं ना, ये किचन रूम है तो ये बैठक रूम है, ये क्या बेड रूम है, नहीं मालूम क्या क्या है, कई कई मकान होते हैं। तो ये अलग अलग बताया कि ये वो है, ये वो है, ये किसका, ये मेरा, ये सब भगवान का, ये भगवान का बता देंगे, बगीचा भगवान का, रसोई भगवान की, हवेली भगवान की, महल भगवान का, कमरा भगवान का, ये सब भगवान का बताते गए बताते गए, सब बताते बताते आखिर में मंदिर में पहुंचे। ये किन का? ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, वहां आकर के ये मेरे हो। तो अब वो मेरे हो गए, तो अब वो मेरे होने के बाद में भगवान का अपने माध्यम से सब भगवान के हो गए, तो अपना मालिक हो गए, अपना आप ही स्वाप है। इस प्रकार सब कुछ है, ये उनको उनसे भिन्नता नहीं रहनी चाहिए। भूर भाग करनी का आत्म अनुभव ज्ञान, अरे हमारी करनी हमारे पास में रखो ही क्यों? आपने अपनी करनी ड्राइवर के समान बड़े गुरु महाराज को सुमड़ा दी, अब गुरु महाराज की जैसी इच्छा हो जहां अपनी इस गाड़ी को ले जानी चाहे ले जाने दो। फिर क्यों कहते हो आप इधर मत ले जाए, इधर मत ले जाए, इधर चलो इधर चलो? ड्राइवर वो अपनी मर्जी से ले जाएगा, जहां खड़ा हो करेगा जहां रोकेगा। शब्द रूप बीज के गुरु जन का जन को दे, सोई समर्पण जानिए भोजन माथे ले। गुरु महाराज शब्द रूपी बीजक हमें यथार्थ रूप में सब कुछ समझाते हैं। अपने ऊपर सब कुछ लादे रहने से हमारे ऊपर बहुत सा भार बढ़ जाएगा। मतलब सब कहते मारो है, ओ मारो 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 करता करता इतना बोझ हो जाएगा, वह दब जाओ। पर जिनकी चीज जिनको भगवान को सौंप दो, अपने पास है ही नहीं, है नहीं, केवल भगवान को अपना बना करके रखोगे, तो आपके बोझ तो बढ़ेगा नहीं और कमी किसी प्रकार की चीज की पड़ेगी नहीं। बोझ ये सब समर्पण भाव है, तो अपना आपा समर्पण गुरु महाराज को कर देना, इसी में हमारी सच्ची समझदारी है। नहीं शीश लेवे सदा संत सेवे, गुरु कर्णहारा सभी है तुम्हारा, सब कुछ करने वाले गुरु महाराज है। करे करावे राम जी, मैं कुछ करता नहीं, जो कुछ करता मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ माही। बीसे मालस जोई सबे सजय भाव सोई गृह नारदासम अरप एवासम कहा नगर मालम खजाने दुसालम माल हो घर में घर कुटुम परिवार हो कपड़े हो घोड़ा हो हाथी हो सब कुछ ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि महाराज पांचों कोष माई लीजिए आप साई ये सब आपका है आप संभाले महाराज आप संभाले मेरा ना है तेरा और मैं तो अग्र चेरा मेरा तो इसमें कुछ है नहीं मैं तो केवल आपका हूँ आपका दास हूँ। भक्ति नव अंग जानिए इम सदगुरु के माए गुरु प्रसाद प्राप्त हृदय वेद मुनि जन गाए ये नवदा भक्ति है गुरु महाराज के साथ में जोड़ करके आप इनसे निहाल होना चाहो तो हो सकते हो। इससे भी अब और पराकाष्ठा की बात बताते हैं ये तो नवदा भक्ति शास्त्रों में मिलती है लेकिन आप आगे बात बता रहे हैं इनसे भी बढ़कर के गुरु बोधक चिंतामणि और कल्तर आप और पार्श भावन चंदना गुरु शब्दा गुरु माए चिंता हरण आनंद कर्ण जन्म कल्पना मेट गो त्रिविध जालक मिटी पद पंकज गुरु भेट। गुरु महाराज चिंतामणि है कल्प वृक्ष के समान है जो हमारे जीवन में दिव्यता लाया करते हैं लेकिन भैया गुरुदेव सरब भर और नहीं गुरुदेव जैसा गुरुदेव गुरुदेव जी महाराज के बराबरी वाला कोई है ही नहीं। आखिरी भक्ति नवदा भक्ति जब जहाँ आकर के इकट्ठी हो जाती है वहां पर नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है सज्जन नवदान नवमी भक्ति जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं और जहाँ प्रेमा भक्ति आ गई बाकी की नवदा भक्ति उसमें आकर के अपना आप ही विलीन हो जाती है। जब तक नदियां धरती पर जमीन पर चलती चलती समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है तो नदियों का अलग अलग नाम होता है। आज इस ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई गंगा में आ गई जमुना में आ गई और नर्मदा में आ गई ऐसा कह सकते हो पर जब वो पानी जाकर के समुद्र में मिल जाता है तो फिर नदी का कोई नामो निशान नहीं रहता वहाँ केवल समुद्र ही समुद्र है। तो जहाँ ये सब नदियां प्रेम के साथ में जाकर के मिल जाती है पर प्रेम रूप परमात्मा के साथ में गुरु महाराज के प्रेम के साथ में जुड़ जाती है तो सारी नदियों का अस्तित्व मिट जाता है वहां पर केवल प्रेम ही प्रेम छा जाता है बस और कुछ नहीं। अब वहां नहीं तो श्रवण की आवश्यकता नहीं कोई कीर्तन की नहीं कोई दूसरी नवदा भक्ति की आवश्यकता प्रेम की बात जहां आ गई तो प्रेम में जाने के बाद में फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं। इसीलिए गोपियों को जो भक्ति के आचार्य बनाया है तो यही प्रेमा भक्ति को प्रकट करने वाली गोपियां थी इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भक्ति की आचार्य कहा है और आचार्य उन वो होते हैं जो कोई न कोई अपना नया सिद्धांत प्रकट करते हैं सिद्धांत स्थापित करते हैं और वो मान्य होता है। तो ये प्रेम रूप जो भक्ति का सिद्धांत ये गोपियों के द्वारा प्रकट हुआ है। गोपी अपने घरों में रहती नहीं कभी आरती करती नहीं कोई पूजा करती केवल श्याम सुंदर हमारे हैं हम उनकी हैं बस यही प्रेम के साथ में उनका संबंध जुड़ा हुआ था। श्री रामदास जी महाराज के दर्शन रामदास जी महाराज जिस समय गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए सिंथल बढ़ने लगे थे उस समय उनका वर्णन लिखा है उनके हृदय में कैसा प्रेम था जैसा गोपियों का प्रेम था श्याम सुंदर के साथ में। ये दयाल जी महाराज ने दृष्टांत दिया कि प्रेम का प्रसंग हर किसी के समझ में नहीं आता है प्रेम की बातें बड़ी विलक्षण हुआ करती है प्रेम दिखने के लिए कुछ और होता है करने के लिए उसको कुछ होश रहता नहीं क्या कर दो मारो कूटो जारो कोई चूटो घोटो पी लो सोई और कोई मार डालो पीटाई करो घोटे में डाल के घोट डालो पड़ना गिरना मरना मर ही आगे पीछे हरदम हरी उसको तो प्रेम में एक सवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। इस प्रकार का वो समर्पित भाव हो जाता है प्राण दे हरिवारणे देव अनेक सुबार मैं भया हनुमंता प्रेम का दूजी शुद्धन सार जो तो प्रेम के वश में हो जाते हैं फिर उनको दूसरा कोई होश हवास नहीं रहता है। ऐसे प्रेम की बड़ी विलक्षण स्थिति है वही प्रेमा भक्ति हमें प्रभु के साथ में जोड़ने के लिए पहले पहले गुरु महाराज के साथ में वही प्रेमा भक्ति जोड़नी पड़ेगी उसी प्रेम के साथ में पहले गुरु महाराज के साथ में अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ी हुई बात ही हमें परमात्मा को प्राप्त कराएगी परमात्मा का साक्षात्कार कराएगी। गोपियों के प्रेम का विचित्र प्रभाव देखिए दुनिया में जहाँ कहीं स्मशान होता है, शरीर का जो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है वो जगह स्मशान कहलाती है, अशुद्ध होती है। वहां की मिट्टी लग जाए तो स्नान करना पड़ता है, धुआं लग जाए तो भी स्नान करना पड़ता है, ऐसा विधान है। परंतु गोपियों का शरीर जहां जाकर के गिला, कहां ये जानते ही हो, द्वारिका में, द्वारिका के पास में कहीं है नहीं, कौन सा स्थान, गोपी तलाई, वहां जातपत ही उनको पता पड़ गया कि श्याम सुंदर नहीं रहे हैं, बस उसी जगह उनका शरीर ऐसा प्रेम के प्रवाह में पानी बनकर के पिघलने लगा, पिघलते 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 पूरा का पूरा शरीर मिट्टी बन गया बस, और वो मिट्टी गोपी चंदन बन गया। और वो गोपी चंदन कितने वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, परंतु मिट्टी आज जो भी उस मिट्टी का स्पर्श करती है वही गोपी चंदन बन जाती है। और उस गोपी चंदन का प्रभाव यह है, आज भी जहां स्मशान में जाके आते हैं, वापस आने के बाद स्नान करने की पवित्रता स्मशान की कब होगी, जब वो गोपी चंदन का तिलक लगाएंगे अपने बाल पर तो पवित्रता होगी। बताइए, गोप तलाई तिलक सिर आन मशाणा छोत, ये विलक्षणता क्यों है, वो उनके प्रेम की विलक्षणता है और कुछ नहीं। शरीर पृथ्वी जल तेज वायु का था, उनका भी था और हमारा भी है, पर हमारे में वो प्रेम नहीं और उनमें वो प्रेम था। उनकी प्रेम की पहचान केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर सकते नहीं। हमारी चर्म दृष्टि उनके प्रति दोष भाव देख सकती है लेकिन उनके प्रेम को पहचान नहीं सकती, उनमें दुर्गुण देख सकती है, दुर्भावना ला सकती है, परंतु प्रेम को नहीं पहचान सकती। प्रेम की पहचान, तो वही प्रेम हमें प्राप्त करना है, तो पहले पहले परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने के लिए अपने गुरु महाराज के साथ में अपने प्रेम का संबंध जोड़ो, जाओ जीव निहाल हो जाएगा, जीव धन्य बन जाएगा। इस प्रकार प्रेमा भक्ति के साथ में संबंध जोड़ने की बातें बताते हुए आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम लेना चाहते हैं। आगे का प्रसंग प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से अगले दिन के समयानुसार प्रारंभ हो जाए, ऐसी भावना रखते हुए हरिनाम का स्मरण करो और प्रेम में ही सराबोर हो जाओ, ऐसी गुरु महाराज और परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। ओम राम राम, मैं तो मारे राम जी रा, राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा, राम जी है
राम जी है मारा रे, मैं तो मारे।